तो वर्णाश्रम समाज में हम लोग रिलेटिवली मतलब सापेक्षित दृष्टिकोण से हम लोग सुखी रह सकते हैं और अंत में भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। तो ये भगवान ने प्लान दिया, तो इसके अनुसार चलने से तो ये हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो जब भगवान के प्लान के छोड़कर हम लोग अलग प्लान बना दिया तो क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, जो जैसे आधुनिक समाज में हो रहा है ना। और उसके बाद हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कौन सा वो देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तुवा परस्परं भावयन्तः श्रेया परमं अवाप्सता। तो ये भावयंत भावयंत शब्द बार बार आ रहा है ना इस श्लोक में। और भगवान यहाँ पर श्रेय परम अवाप सत बोलते हैं, तो सर्वोच्च सिद्धि को आप प्राप्त करेंगे ऐसे कहते हैं। तो एक दूसरों को संतुष्ट करके, तो एक चक्र के समान है ना। सो यज्ञ करने से देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे, देवी देवताएं अलग अलग चीजों को प्रदान करेंगे, उसके द्वारा फिर से यज्ञ करेंगे, ऐसे ये चक्र चलता है। और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ये देवी देवताएं कौन है उसके बारे में बताते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि कहते हैं कि यज्ञ हालांकि देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भी है यहाँ पर, जैसे भगवान बता रहे हैं, लेकिन अंत में सभी वो भगवान विष्णु के अर्पित होना चाहिए। तो वही सभी यज्ञों का स्वामी है, भोक्ता है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृष्यति। तो वही सभी यज्ञों का भोक्ता है, यही अंतर है। तो यज्ञों में भी केंद्र कौन होना चाहिए, भगवान विष्णु होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर देवी देवताओं के बारे में भगवान बोल रहे हैं। सो कई सारी वेदों के जो अनुयायी होते हैं, तथाकथित वेदों के पिछले अध्याय में जिनके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, जैमिनी और उनके अनुयायी वगैरह, वो लोग सिर्फ देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं। तो एक दृष्टिकोण से वो सिर्फ ना वो यज्ञ करना है इसलिए करेंगे, ऐसे वो करते हैं। तो अंत में भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करना चाहिए, वो केंद्र बिंदु नहीं है तो हम लोग पतन हो जाएगा। सो अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानाति छत्वेनाश्चवन्तिते तत्वेनाश्चवन्तिते। तो नवे अध्याय के 24वें श्लोक। तो अहम ही सर्वयज्ञानां सभी यज्ञों का मैं भोक्ता हूँ, भोक्ता च प्रभुरेव च उसका प्रभु मैं ही हूँ, स्वामी मैं ही हूँ, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। यहाँ पर वो बोल रहे हैं देवी देवताओं के लिए प्रसन्नता के लिए यज्ञ कीजिए बोल रहे हैं, लेकिन अंत में बाद में क्या बोलेंगे, तो बाद में क्या बोलेंगे कि मैं भोक्ता हूँ, अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानाति। ऐसे जिनको वो भगवान को जो नहीं जानते हैं कि वही भोक्ता है और स्वामी है सभी यज्ञों का, तत्वेना शवंति दे, उनका पतन हो जाता है ऐसे। तो तो जो लोग वर्णाश तत्वेनाशी, तो जो लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं लेकिन भगवान कृष्ण का सेवा नहीं करते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, तो वो लोगों का पतन हो जाएगा। क्योंकि हमेशा सभी चीजों में भगवान कृष्ण ही केंद्र होना चाहिए, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए श्रील प्रभुपाद यहां पर, हालांकि यज्ञ और कई सारे यज्ञ देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए है, लेकिन अंत में भगवान कृष्ण ही उनके भोक्ता है, ऐसे बोल रहे। तो अंत में सभी यज्ञों का प्रमुख उद्देश्य है भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना। तो और इन यज्ञों को करने से कोई नैसर्गिक जो सुविधा है उसमें कोई कमी नहीं होगा, ऐसे प्रभुपाद यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो क्यों अभाव आता है, वाई देर इज स्केर्सिटी, दुनिया में अभी क्यों अभाव एक समस्या है, स्केर्सिटी ऑफ फूड, स्केर्सिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। तो पहले जमाने में बहुत सारे ऐसे होते थे, बहुत सारा क्या होता था, सोना और ऐसे कई नैसर्गिक जो खनिज है, खनिज बोलते हैं ना, मिनरल्स, तो खनिज और बहुत सारे धान्य, बहुत सारा सब कुछ हुआ करता था, किसी का कुछ कमी नहीं था। तो अभी स्केर्सिटी अभाव इसलिए है क्योंकि हम लोग यज्ञ नहीं करते हैं। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। और यज्ञ करने का अन्य भी कई सारे साइड बेनिफिट्स प्रभुपाद यहाँ पर बोल रहे हैं, अन्य लाभ भी होते हैं, तो जिनसे अंततः भवबंधन की मुक्ति मिल जाती है। अंततः सर्वोच्च क्या है, तो भवबंधन से मुक्ति मिलता है, और उसके साथ साथ अन्य बहुत सारे ऐसे लाभ हमें प्राप्त होते हैं। तो यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसे कि वेद वचन है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धो शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंभे सर्वग्रंथिनाम विप्रमोक्षः। यज्ञ से मनुष्य को खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं, और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है, जीवन शुद्ध होने से स्मृति की सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं, और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है, और यह सब मिलकर कृष्ण वाणामृत तक पहुँचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। अगला श्लोक है, इष्टान भोगान ही वो देवा धास्यन्ते यज्ञ भावितः तये दत्तान प्रदायेभ्यो ये भुङ्क्ते स्तेन एव सः। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारे सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। हम लोग वो चक्र के बारे में चर्चा कर रहे थे, बीच में वो रुक गया, वो चक्र क्या हो जाएगा, हम लोग क्या हो जाएंगे, हम लोग चोर हो जाएंगे। फिर से प्रभुपाद यहाँ पर देवताओं के बारे में वर्णन करते हैं। तो और इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत सारी चीज वर्णन कर रहे हैं। एक चीज यहाँ पर भगवान बोल रहे, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः, कि देवी देवताएं आपकी जरूरतों को पूरी करेंगे। लेकिन अंत में वो बाद में वो कहते कि कैसे सब कुछ उनके द्वारा ही प्रदत्त है, देवी देवताएं भी क्या है तो उनसे उनकी अनुमति से या उनके द्वारा शक्ति प्रदान करने के कारण ही ये सभी जरूरतों को हमें प्रदान कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से वो प्रदान नहीं कर सकते हैं। तो सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमिहते लभचेते तथा कामान मय्येव विहितान हितान। किसी को पता है कौन सा श्लोक नंबर 7:22? वहाँ पर वो कहते हैं कि जो श्रद्धापूर्वक इन दे इस जगत के देवी देवताओं को पूजा करते हैं, अपने अपने इच्छाओं को पूरी करते हैं, लेकिन वो सभी जो लाभ है मैंने ही प्रदान, मैं ही प्रदान करता हूँ, ऐसे बोलते हैं। तो अंत में सब कुछ क्या है, भगवान कृष्ण से ही आता है। तो वो हमें याद रखना चाहिए, हमें ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि देवी देवताएं क्या है स्वतंत्र रूप से हम लोगों को ये प्रदान कर रहे हैं। तो वो दूसरा नाम अपराध है ना, दूसरा नाम अपराध क्या है, देवी देवताओं को स्वतंत्र समझना, स्वतंत्र, वो स्वतंत्र नहीं है, वो लोग क्या है भगवान के ऊपर निर्भर है, सिर्फ भगवान ही एक ही व्यक्ति है जो स्वतंत्र है। तो और इस भौतिक जगत में जो भी है वो सब भगवान के ऊपर निर्भर है। तो क्योंकि भगवान सबका स्रोत है, इसलिए वो सब परम सत्य है। वो तो इस भौतिक जगत में कोई शक्ति है उसका स्रोत भगवान है, इस भौतिक जगत में कोई विद्या है उसका स्रोत भगवान है, इस भौतिक जगत में कोई सुंदरता और यश है वो भी उसका भी स्रोत क्यों है, भगवान है। तो इसलिए भगवान क्या है, सभी ऐसे सापेक्षित सत्यों का स्रोत है। तो इसलिए वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, अन्य जो भी सत्य है उनके ऊपर निर्भर है। तो देवी देवताएं भी उनके ऊपर निर्भर, वो स्वतंत्र नहीं है। तो लेकिन भगवान ने उनको अपॉइंट किया है, तो आप इसको सप्लाई कीजिए, ऐसे वो करते हैं। तो प्रभुपाद कौन ये यज्ञ करेंगे उसके बारे में पहले वर्णन करते हैं, क्योंकि जो लोग भगवान को नहीं समझेंगे वो लोग अलग अलग गुणों के प्रभाव में आने के कारण वो अलग अलग देवी देवताओं को पूजा करेंगे, उनके लिए ये यज्ञ है। यहाँ पर क्या लिखते हैं, किंतु जो यह नहीं समझ सकता है कि भगवान क्या है उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। किनके लिए देवताओं के यज्ञ होना होते हैं, वेदों में इनको क्यों वर्णन किया गया है, क्योंकि जो लोग सीधी तरीके से भगवान को नहीं समझते हैं वो लोगों के लिए ये यज्ञ बताए गए हैं। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। तो 17वें अध्याय में अलग अलग प्रकार के जो गुणों के प्रभाव से अलग अलग प्रकार के जो श्रद्धा के विभाग है उसका वर्णन करते हैं। तो अपने श्रद्धा के अनुसार वो लोग अलग अलग देवी देवताओं से आकर्षित हो जाते हैं। तो इसलिए वो ये जो भगवान को नहीं समझते हैं उनका श्रद्धा किसी अन्य लोगों में है, उनके लिए ये सब यज्ञ बताए गए हैं। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। जैसे यज्ञ है वैसे देवी देवताओं का भी उपासना अलग अलग प्रकार से है, अलग अलग गुणों के प्रभाव से ऐसे कहते हैं। जो सत्वगुण में है वो विष्णु भगवान विष्णु का आराधना करते हैं, तो और यहां पर श्रील प्रभुपाद ये पंच महायज्ञ वो जरूरी है उसके बारे में कहते हैं। तो अंततः समस्त यज्ञों का देय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम पंच यज्ञ आवश्यक है, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। वो क्यों आवश्यक है बताइए, पंच महायज्ञ, ये पंच महायज्ञ क्या है बताइए, क्या है पंच महायज्ञ? पांच प्रकार के जो पाप है कोई उससे बच नहीं सकता है दुनिया में। ये सृष्टि ऐसे बनाए गए हैं कि पाप किए बिना नहीं रह सकते भौतिक जगत में। तो वो कौन कौन से पांच पाप है बताइए, पांच प्रकार के पाप? जब हम लोग चलते हैं तो कई सारे जीवों को मारते हैं, जब हम लोग पानी पीते हैं बहुत सारे जीवों को मारते हैं, जब हम लोग अग्नि को जलाते हैं बहुत सारे जीवों का हत्या होता है, जब हम लोग साफ करते हैं बहुत सारे जीवों का हत्या होता है, सफाई सफाई चार हो गए, और कौन सा है? ग्राइंडिंग और कुकिंग, कुकिंग कम्स इन दैट फायर ओनली राइट यूनाइटेड, तो ग्राइंडिंग वो हो गया ना, श्वास लेना और ग्राइंडिंग करना ज्यादा हो गया, एक एक्स्ट्रा छह पाप महापाप हो गए। विच वन इट इज? आई ऑल्सो राइट लॉन्ग बैक समय तो ऐसे पांच प्रकार के जो पाप है कोई उससे बच नहीं सकते हैं, लेकिन तो ये पांच महायज्ञ करने से उससे मुक्त हो सकते हैं। तो और श्रील प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में जोर दे रहे हैं कि कैसे हम लोग भगवान के ऊपर निर्भर है, इसके ऊपर जोर दे रहे हैं। आजकल बहुत प्रोपेगेंडा चल रहा है ना, भगवान जरूरत नहीं है, है ना, भगवान का जरूरत नहीं, उनको मानने का जरूरत नहीं, उनको भक्ति करने का जरूरत नहीं है, ऐसे नास्तिकवाद बहुत प्रचार चल रहा है जोरदार से। तो लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद बोलते हैं किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती है, कोई कुछ भी बना नहीं सकता। उदाहरणार्थ मानव समाज में बोझ पदार्थों को ले, इन बोझ पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न फल शाखा दूध चीनी आदि है, तथा मांसाहारियों के लिए मांस आदि, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। ऐसे हुआ है क्या कभी मनुष्य ने ये सब चीजों को सृष्टि किया है करके?
भगवान ने दिया ये सब चीज।
तो जब ये साम्यवाद का प्रचार, साम्यवाद मतलब वो नास्तिकवाद है और उग्रवाद है, वो दो अर्थ होते हैं साम्यवाद का। तो जब साम्यवाद का प्रचार जोरदार से हो रहा था कुछ देशों में, रशिया वगैरह, तो वो लोग गांव-गांव में जाते थे और वो जोर से लोगों को बोलते थे कि आप लोग गिरिजाघर में जाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमारे निजी जीविका दीजिए, ऐसे हमें अन्न दीजिए, हमें रोटी दीजिए, ऐसे कुछ प्रार्थना करते हैं। क्या भगवान उसको प्रदान करते हैं? ऐसे वो लोगों को प्रश्न पूछते, जाओ अंदर प्रार्थना करके आ जाओ, ऐसे लोगों को बाध्य करते थे। जब लोग वापस आते हैं तो वो पूछते थे क्या भगवान ने दिया करके, तो फिर वो लोग बोलते थे अभी हमसे पूछो, ये साम्यवादी मित्र, ये साम्यवादी भाई, हमें ये सब प्रदान कीजिए, ऐसे पूछो। और अभी वो तुरंत पूछते तो मासूम लोग हैं, उनको बाध्य कर रहे लोग, तुरंत ही ट्रक लोड भरकर वो लोग वितरण करते थे अन्न या रोटी या ब्रेड, तो ऐसे वितरण करते थे। प्रभुपाद कहते तो ये राजकल मूड साम्यवादी लोग, क्या वो अपने फैक्ट्री में ये सभी धान्य वगैरह बनाया, ये लोग कहाँ से आए हैं धान्य वगैरह? वो भगवान से ही आता है, तो उन्होंने तो नहीं बनाया है कि नहीं। आजकल ये लोग बहुत ये फैक्ट्री और ऐसे इसके ऊपर लोग सोचते हैं हम उसके ऊपर ही निर्भर है। वास्तविक निर्भरता क्या है? ऐसे चीज़ों के ऊपर हम लोग निर्भर है जो भगवान ने प्रदान किया है, अंत में हम लोग भगवान के ऊपर ही निर्भर है। ऐसा नहीं कि हम ये बड़े बड़े फैक्ट्री के ऊपर निर्भर है ना? लोग अंत में है ना, हम भगवान के ऊपर ही निर्भर है, तो वो लोग इतना तो मूड बन गया तो ये समझते नहीं हम लोग, तो इसलिए हमें इसको प्रचार करना चाहिए। वो लोग कैसे हम लोग भगवान के ऊपर ही निर्भर है, ये लोग तो बना नहीं रहे ना, सभी गेहूं या बात है ना, राइस, ये लोग तो नहीं बना रहे ना फैक्ट्री में, तो नहीं बना रहे। अभी भी हम लोग भगवान के ऊपर ही निर्भर है, ये हमें श्रद्धा होना चाहिए। एक और उदाहरण ले, यथा ऊष्मा प्रकाश जल वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक है, इनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। परमेश्वर के बिना न तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, न चांदनी, वर्षा या प्रातःकालीन समीर ही, जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। तो हम लोग कितना भगवान के ऊपर निर्भर है, तो ये हमें जानना चाहिए। एक भगवान के बिना हम लोग एक क्षण भी नहीं जी सकते हैं, एक क्षण भी नहीं जी, पूरा हमारा अस्तित्व क्या है, भगवान के ऊपर निर्भर है। फर्स्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है, यहाँ तक कि हमें अपने उत्पन्न उद्यमों के लिए भी अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, यथा धातु, गंधक, पराग, मैंगनीज तथा अन्य अनेक आवश्यक वस्तुओं जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम इनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। तो एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद जी से मिलने के लिए आए, उन्होंने प्रभुपाद जी ने पूछा आप क्या करते हैं? हमारा क्या है, ग्लास का फैक्ट्री है और बिजनेस है बोलते हैं। तो और वो कैसे बनाते हैं आप? तो ये चीज़ अलग अलग जो क्या बताया उन्होंने, रॉ मटेरियल्स क्या बोलते, बहुत सारे लोग बोल दिया तुमने, सैंड वगैरह उससे बनाते हैं ऐसा बोला। सो सैंड कहाँ से आता है? प्रकृति से। प्रकृति किसका है? भगवान का है। हाँ, फिर तुमने भगवान का चोरी किया ऐसे प्रॉपर बोले। फिर उसने बाद में मैं डोनेशन भी देता हूँ ऐसे। फिर प्रॉपर बोले तुम छोटा चोर हो ऐसे बोले। फिर उसने बहुत सारा फिर से डोनेशन देखेगा। है कि नहीं? सब कुछ भगवान का लेता है और अपना बोलता है मैं बनाता हूँ, है ना? कहाँ से बोलता है ना? तो ये सब तो हमें क्या करना चाहिए? इस उद्देश्य से उनको करते हैं जिनके सचमुच उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाए, जिससे जीवन के चरम लक्ष्य ये सब चीज है, उपलब्ध है। उससे अर्थ नहीं है कि हम उसको अंधाधुंध उपयोग करें, उसके ऊपर शोषण करें, है ना? कामस्य नेन्द्रिया प्रीतिर लाभो जीवेत यावता धर्मस जीवस्य तत्व जिज्ञासा नास्त नार्थो यश्चेह कर्मणि। तो जितना हमें ये शरीर को पालन पोषण करने के लिए जरूरत है उतना ही उपयोग करना चाहिए। ज्यादा उपयोग करेंगे तो हम फिर से चोर बन जाएंगे, ठीक है? यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्र तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय ही हम चोर हैं और इस तरह इस प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। सृष्टि का उद्देश्य यह नहीं है कि इन सृष्टि के जो वस्तुएं हैं उसके ऊपर शोषण करें। जितना हमें जरूरत है उसको लेकर हमें आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना, तो नहीं कि वो उसके ऊपर हम लोग शोषण करें। तो आजकल सभी ये पदार्थों को शोषण किया जा रहा है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा खुदाई करके उसको एक्सट्रैक्ट करके, तो यू नो बहुत सारा माइनिंग होता है। तो इसके कारण हम लोग चोर बन जाएंगे और दंडित हो जाएंगे प्रकृति के द्वारा। तो आज जरूरी नई चीज़ क्यों उसको बनाना चाहिए, क्यों प्रकृति के ऊपर शोषण करना चाहिए? चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं है होता। तो हम लोग ऐसे यज्ञ नहीं करेंगे और जितना ज़रूरत है उतना ही सीमित करके हम लोग उपयोग नहीं करेंगे तो हम लोग चोर बन जाएंगे और कभी हम सुखी नहीं होंगे। भौतिकवादी चोरों का कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता, उन्हें तो केवल इंद्र तृप्ति की चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं। किंतु चैतन्य महाप्रभु तो कलयुग में क्या यज्ञ होना चाहिए उसके बारे में बताते हैं। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया। यह है संकीर्तन यज्ञ जो संसार के कभी भी किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को अंगीकार करता है संपन्न किया जा सकता है। तो अगला श्लोक, यज्ञ शिष्टाशिना संत मुच्यते सर्वकिल विषय भुंजते ते त्वगम पाप एकचंत्यात्म कारण। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वो यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। पिछले श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे जो यज्ञ नहीं करते हैं तो चोर बन जाते हैं। इस श्लोक में और
उनके बारे में बताते हैं कि वो जो यज्ञ नहीं करते हैं वो लोग क्या हो जाते हैं, पापी बन जाते हैं। और इस श्लोक में भक्त कौन है उसका भी वर्णन किया गया। संत शब्द भक्तों को संबोधित करता है। जो यज्ञ शिष्टासीना संत, जो यज्ञ के जो अर्पित किए भोजन को स्वीकार करते हैं वही भक्त है, ऐसे भगवान भक्तों का परिभाषा दे रहे हैं। समझ में आ गया, यज्ञ शिष्टासीन संत ये परिभाषा है। संत भक्त मतलब कौन है, वो सिर्फ प्रसाद ग्रहण करता है। जो प्रसाद को छोड़कर कुछ और ग्रहण करता है तो कौन है, वो भक्त नहीं है, वो संत नहीं है, वो अभक्त है। प्रभुपाद तात्पर्य में एक और संत का एक और परिभाषा देते, प्रेमांजनचुरित भक्ति विलोचन न संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति अंशां सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जो संत होते हैं अपने नेत्रों में वो प्रेम का अंजन डालते हैं। लोग नेत्र या आंखें सुंदर दिखने के लिए वो क्या करते हैं, कुछ अंजन डालते हैं। तो ये भी प्रेम का अंजन डालने से क्या हो जाता है, तो वो भगवान को हमेशा दर्शन करते हैं हमारे उनके हृदय में, वो संत है। तो यहाँ पर प्रभुपाद उसको उल्लेख कर रहे हैं क्योंकि वो भगवान से प्रेम रहता है, उनको अर्पण किया बिना वो कुछ भी नहीं खाते हैं। जैसे वैदिक समाज में ऐसे हुआ करता था, जो स्त्री होती है जब तक अपने पुरुष को पहले खिलाती नहीं है वो खाती नहीं थी, वो है ना, और उनका वो चिस्ट लेती थी वो, तो ऐसे उनके बीच में प्रेम बढ़ता था। तो ऐसे भक्त और भगवान के बीच में ऐसे, तो भगवान को अर्पण किया बिना वो खाएंगे नहीं और उनका उच्चिष्ट लेंगे, तो ऐसे प्रेम का अंजन जो है बढ़ता है वो, तब जाके वो भगवान को हमेशा दर्शन करते हैं। लेकिन जो लोग इंद्र तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वो केवल चोर भी नहीं, वो लोग क्या है, तो पापी भी है, सिर्फ पाप खाते हैं वो सिन। लोग अंधाधुंध इधर उधर खाते रहते हैं, है ना, सुअर की तरह, ना सुअर इधर उधर घूमता है और खाता रहता है ना, तो ऐसे ये लोग भी सुअर की तरह इधर उधर रोड के रास्ते के ऊपर होटल में रेस्टोरेंट में ऐसे खाते हैं। ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता था रेस्टोरेंट में खाना, रास्ते के ऊपर खाना, ये सब, और इसको ये लोग सिविलाइज मानता है ना, सुअर की तरह खाना उसको क्या है, प्रगति मानता है। तो ये सब लोग पापी है, पाप कर रहे हैं। हमें इस भौतिक जगत में जो भी चीज है उसके ऊपर अधिकार नहीं है, तो ये सब कृपा है हमारे ऊपर, तो इसको हम लोग छुरा नहीं सकते। इसको और विस्तार से अगले तात्पर्य में भी श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं। भगवद गीता के महान टीकाकार श्रील बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं, य इंद्राद्य ये इंद्रा इंद्रागण ये इंद्राद्य अंगतया अवस्थितम यज्ञम सर्वेश्वरम विष्णु अभ्यर्च तशेषम अश्नंतितेन तद्देह यात्रम संपादयन्ति ते संतः सर्वेश्वरस्य यज्ञपुरुषस्य भक्ताः सर्वकिल विषय अनादिकाल विवृद्धैर आत्मानुभाव प्रतिबंधकैर निखिलय पापैर विमुच्यन्ते। तो ये जो है ये इस श्लोक के ऊपर तात्पर्य है। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे सारे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो संसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश देते हैं, जिससे वे उन उत्पादनों के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं के भी स्वतः पूजा हो जाती है। कौन सा श्लोक है वो? सरोवर यथाथरोर मूल निषेचनेन द्रव्यन्ति यस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारश्च यतेन्द्रियाणां सर्वाहरं क्या है अच्युतेज तथैव सर्वाहरं अच्युतेज। तो श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 31वां अध्याय श्लोक क्रमांक 14, जिसको श्रील प्रभुपाद जी ने 9वें अध्याय के तीसरे श्लोक के तात्पर्य में उल्लेख किया है। तो ऐसे देवी देवताओं को स्वतंत्रता से आराधना करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग स्वतंत्र रूप से पत्तों को, फूलों को, अलग अलग टहनियों को हम लोग क्या नहीं करते हैं, पानी नहीं डालते, सिर्फ जड़ को पानी डालते हैं। तो वैसे हम लोग पेट को अन्न प्रदान करते हैं, अलग अलग हाथ को, पाँव को, कान को हम लोग खिलाते ना ही, तो उनको प्रसन्न करने से सब कुछ प्रसन्न हो जाते हैं। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग अनेक अंग स्वरूप देवताओं को भी स्वतः पूजा हो जाती है, अतः देवताओं के की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्म फल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कलमशों से निरापद हो जाता है। सो या जब कोई छूत का रोग फैलाता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणु विरोधी टीका लगाया जाता है। तो ये उदाहरण दे रहे, ये रोगाणु रोधी टीकाएं क्या है, वही सभी रोगों का स्रोत है ये। तो ये सरकार का क्या होता है, ये सभी फार्मास्यूटिकल कंपनियों के साथ संबंध होता है। तो वो लोग इसलिए ये सब जोर वैक्सीन डालने के लिए सभी को बाध्य करते हैं और ऐसे गलत गलत प्रोपेगेंडा करते हैं कि पहले ज़माने में वैक्सीन नहीं डाला था इसलिए लोग मरते थे, बच्चे मरते थे, आजकल ज़्यादा जीवित हो रहे हैं। वो पूरा प्रोपेगेंडा है, वो पूरा पहले ज़माने में लोग ज़्यादा जीते थे ना, हम लोगों का अनुभव है। तो ये सब पूरी तरह से प्रोपेगेंडा है, इसलिए वैक्सीन डालना चाहिए रोगाणु रोध। तो ये वैक्सीन सभी उसका इतिहास आप पढ़ेंगे तो वो जर्मनी के जो नाजीवाद के समय उसको कंसंट्रेशन कैंप्स में उपयोग किया जाता था। तो अभी उसको फार्मास्यूटिकल कंपनी ने क्या किया, तो उसको लेकर प्रमोट किया उसको सरकार के साथ ऐसे समझौता करके। तो इसका भी बहुत बड़ा हंगामा है। है इसके पीछे भी, क्या बोलते हैं उसको, स्कैम, व्हाट इज इट, स्कैम व्हाट दे से,
घोटाला,
ये सब घोटाला है। एनीवे, यहाँ पर उसके बारे में प्रॉपर बोल रहे हैं। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किए जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरपराध बनता है। वो रोगाणु आदि टीका वो क्या है, वो काम करता है या नहीं करता है नहीं पता है, लेकिन प्रसाद तो काम करेगा, ठीक है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किए गए भोजन करता है, वह उन समस्त विगत भौतिक दूषणों को के पलों का सामना करने में समर्थ होता है जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। इसके विपरीत जो ऐसे नहीं करता वह पापपूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे उसे सारे पाप कलों को भोगने के लिए अलग शरीर कुकरों सुकरों के समान मिलता है। तो जो लोग प्रसाद काट नहीं खाते हैं, सिर्फ हाँ ऐसे ही कुछ इधर उधर खाते रहते हैं, तो कुत्ते और सुअर बन जाएंगे। हाँ ठीक है, सीधा बैठो, बूढ़े हो गए नया ब्रह्मचारी, बूढ़े हो गए। यह भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है, और जो भी भगवान के प्रसाद ग्रहण करके उनसे निरपाद वो लेते हैं वह उनके आक्रमणों से बच जाता है, किंतु जो ऐसे नहीं करता वह कलमश का लक्ष्य बनता है। तो ये महत्व है यज्ञ करने से या प्रसाद को ग्रहण करने का महत्व है, नहीं तो हम लोग सुअर और कुत्ता बन जाएंगे बस। श्लोक क्रमांक 14, अन्नागवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः पर्जन्या यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो बेसिकली भगवान यहाँ पर 12वें श्लोक 13वें श्लोक और 14वें श्लोक में यज्ञ का जरूरत के बारे में भगवान वहाँ नेसेसिटी ऑफ यज्ञ, प्रभुपाद जी भी अलग अलग चीज़ तात्पर्य में वर्णन करते, क्यों किसको पर करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कौन ऐसे करते हैं, हाँ तो ये सब चीज़ भी वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर आप यज्ञ नहीं करेंगे तो अन्न भी नहीं मिलेगा, ऐसे बोलते हैं भगवान। अन्ना भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। तो अन्न बारिश से होता है, फैक्ट्री में नहीं बनता है, और सभी जीव क्या है तो अन्न के ऊपर निर्भर है। ऐसा नहीं कि हम लोग कंप्यूटर का के निर्भर जिएंगे, है ना, या माइक्रोचिप्स या नट्स एंड बोल्ट्स का के हम लोग जिएंगे, ठीक है ना, अन्न के ऊपर। आज भी जो भी ऐसे कंपनी में काम कर रहा है वो लोग भी अन्न के ऊपर ही निर्भर है ना, है कि नहीं। जो कहता है कि मैं मांसाहारी हूँ, मैं शाकाहारी नहीं हूँ, इसलिए अन्न के ऊपर, वो सिर्फ मांस खाता है, सिर्फ मांस खा के जी सकता है, बता पूछिए उसको जाके, हाँ सिर्फ मांस खाओ तुम, कुछ और मत खाओ, ऐसे होता है क्या, नहीं होता है। वो सिर्फ मांस खा के भी जीता है तो भी वो मांस कहाँ से आता है, पशु से आता है, पशु किसके ऊपर निर्भर है, फिर अन्न घास के ऊपर, अन्न के ऊपर। सीधी अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से सभी जीव क्या है अन्न के ऊपर निर्भर है, अन्न नहीं है तो हम लोग जी नहीं सकते। तो आजकल ये प्रोपेगेंडा चल रहा है ना बहुत सारा, हम लोगों को सभी लोगों को ये भौतिक शिक्षण में भेजना चाहिए। सभी लोग जो जो फार्मर खेती करते हैं, खेती करने वाले के बच्चे भी वो लोग पढ़ाई करने के लिए गए तो खेती कौन करेगा, है कि नहीं। जब भगवान कृष्ण 5 वर्ष के हुए वो तुरंत ही क्या करने लगे, बछड़ा लेकर चराने के लिए चले गए। तो वो स्कूल में जाके पढ़ाई करने के लिए गए होते तो वो बछड़े कौन देखभाल करने गए, है ना। तो अभी ये मास एजुकेशन उसका प्रमोशन किया जाता है, प्रोपेगेंडा किया जाता है। वो उसके पीछे प्रोपेगेंडा के पीछे क्या है, सभी लोग कारखाने में काम करने के लिए उनको मजदूर चाहिए, वो है। लेकिन आप सभी को ऐसे कारखाने में वो पढ़ाई करने में स्कूल विश्वविद्यालय में जा भेजेंगे, उनको शाला में भेजेंगे और सभी को फैक्ट्री में उनको काम करने के लिए लगाएंगे तो कौन अन्न उगाएगा। वो फैक्ट्री में सभी लोग काम करेंगे तो ये फैक्ट्री का माल खाके जीओगे क्या, है ना। ये मास एजुकेशन इज कम्प्लीटली नॉनसेंस। तो हमारे एक भक्त बच्चे रहते हैं, क्योंकि एक डोनर था, उन्होंने इनको बताया कि आप ऐसे कुछ शाला खोलेंगे कि लोग ऐसे खोलते हैं ना, कोई भी आध्यात्मिक संस्था हो सभी क्या करना चाहिए, या कोई साधु हो ऐसे विश्वविद्यालय खोलना चाहिए या अस्पताल खोलना चाहिए, ऐसे शाला खोलने के लिए। उन्होंने क्या बताया, आप खोलेंगे तो मैं उसको देखभाल, मैं उसके लिए डोनेशन दे दूंगा। तो ये भक्त उनको सोच रहे थे कैसे इसको व्यक्ति को भी भगवान की सेवा में लेके आना चाहिए कर। तो गरीबों के बच्चों के लिए शाला खोलना, तो ये उनका क्या था, इच्छा था, उसको प्रसन्न करने के लिए हमारे भक्त ये खोलना चाहते थे, उनको सेवा भगवान की सेवा में लगाने के लिए। अभी गरीबों का बच्चे, गांव के जो बच्चे हैं उनको आके लेके आके आप शहर में शाला खोल के आप क्या करेंगे, समाज की सेवा करेंगे। लेकिन उससे क्या हो जाता है, समाज का सत्यानाश होता है। क्यों, फिर कौन अन्न उगाएंगे। सभी गांव के बच्चों को लेके आके शाला में डाल दिया तो अन्न कौन उगाएगा, है कि नहीं। और उनका शोषण, फैक्ट्री में शोषण उनका, ये बड़े बड़े शहर में क्या है, वो शोषण है बस। लोग सोचता है कि हम लोग यहाँ शहर में आके रह के हम लोग बहुत सुखी हो जाएंगे, वो लोग सोचते हैं ऐसे बड़े इमारत में रहना, वो उसको ये सुख का ये क्या है या प्रगति का परिभाषा दिया है। ये लोगों को पानी भी नहीं मिलने वाला है पानी पीने के लिए, आजकल अभी ये सभी रिसाइकल कर रहा है, ड्रेनेज वाटर रिसाइकल, सीवेज वाटर रिसाइकल कर रहा है, उसको सप्लाई कर रहा है। ऐसे क्या है, मल मूत्र खा के पी के रहो, और ये सुख का परिभाषा है। तो लेकिन हम तो ये सब बहुत सारे समस्या हो जाते हैं, तो भगवान का जो सिस्टम है उसको पालन करना चाहिए। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव। तो अन्न कैसे आता है, बारिश से आता है। वो बीच में ऐसा आर्टिफिशियल रेन भी बनाने के लिए वो कोशिश कर रहा था, वो सब बकवास के कार्य करते रहते हैं। सो पर्जन्याद अन्न संभव, यज्ञाद भवति पर्जन्य, यज्ञ से पर्जन्य बारिश होता है, और यज्ञ कर्म समुद्भव। तो यज्ञ कैसे होता है, कर्म को पालन करने से। कर्म का अर्थ क्या होता है, गुणकर्म विभागशः वर्णाश्रम धर्म कर्म सभी एक ही है। कर्म कैसे होता है, वर्ण के अनुसार ना, गुण के अनुसार अलग अलग कर्म होते हैं। तो समस्या, हम लोग कभी कभी हम लोग इसके बारे में सोचते हैं, सेल्फ सफिशिएंसी के बारे में। समस्या सेल्फ सफिशिएंसी का नहीं है, समस्या अन्न का नहीं है, समस्या क्या है, अपने नियत कर्म को पालन न करने का समस्या है। उसके लिए अन्न नहीं मिलेगा, उसके लिए अभाव या शोक जो भी समस्या है वो हो जाते हैं। इसलिए प्रॉपर कहते हैं कि समाज को वर्णाश्रम में विभाजन करना चाहिए, सबको सिखाना चाहिए, प्रशिक्षण देना चाहिए कि कैसे अपने गुण के अनुसार अपने कार्य करना चाहिए, अपने कर्म करना चाहिए। तो प्रॉपर जी इसीलिए चाहते थे इस्कॉन के मंदिर कैसे होना चाहिए, वो एक वर्णाश्रम कॉलेज होना चाहिए, सबको प्रशिक्षण मिलना चाहिए कि इस धर्म में, तो सबको अपने नियत कर्म करने में हमें लगाना चाहिए, उनको प्रशिक्षण देना चाहिए। तो क्या है पॉइंट कि हमें उसके गुण को पहचानना चाहिए और उसके अनुसार उनको नियत कर्म में लगाना चाहिए, तो तब सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है, सबको अन्न मिलेगा, सभी लोगों को जो जरूरतें हैं वो मिलेंगे। तो ये होता है, जब वर्णाश्रम नहीं है तो अन्न भी नहीं मिलेगा, है ना। जब प्रभुपाद जी मस्को में गए 1932 में, नहीं 1972 में, तो वहाँ पर उनके जो सेक्रेटरी सर्वेंट थे वो बाहर गए एक दिन, तो सुबह गए और शाम को वापस आए। प्रभुपाद जी ने पूछा कहाँ गए थे, तो उन्होंने बताया मैं कुछ सब्जी और फल लेकर आने के लिए गया था। इतना क्यों समय लंबा क्यों था बोलते, थोड़ा और फल और सब्जी प्राप्त करने के लिए बहुत ही बड़ा लंबा क्यों। प्रभुपाद जी ने देखा वहाँ पर रशिया में, और बताते ये साम्यवाद के कारण लोगों को खाने के लिए भी कुछ अन्न नहीं है, जब वर्णाश्रम नहीं है तो खाने के लिए अन्न नहीं मिलने वाला तुरंत ही, क्योंकि अन्नाद भवंती भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म संभव। तो इसलिए हमें ऐसे चीजों को प्रेरणा प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, ऐसे मास एजुकेशन और क्या जरूरत है, ऑटो चलाने के लिए क्यों बीएससी एमएससी होना चाहिए उसके लिए, क्या जरूरत है ये सब। वो केरल में 100% क्या है लिटरेसी, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में साक्षरता, तो उसका नतीजा क्या हो गया, किसी को काम नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वो लोग पहले जमाने में अपने जो पिताजी करते थे वो करते, वो अपना काम करते चलते थे, अभी वो उसको वो साक्षर बनाना चाहते थे, वो ऐसे शिक्षण प्रणाली में डाल दिया, वो किसी के लिए योग्य नहीं रहे, ऐसे वो कहते हैं ना हमारा धर्म खो, मेरा धर्म भी खो गया और मेरा पेट भी भरा नहीं, ऐसा स्थिति। प्रभुपाद जी वो कथा बताते थे, वो एक ब्राह्मण था, बहुत ही भूखा था, वो इतना भूखा था कि जाके उसने एक मलच एवन मुसलमान के घर से भीख मांगा उसने। जनरली उस समय पर ब्राह्मण लोग ऐसे नहीं किया करते थे, वो नहीं खाते थे, सिर्फ ब्राह्मण के घर से वो भीख मांगते थे। तो ऐसे मलच परिवार से भीख मांग के वो खा लिया, फिर उसको और चाहिए था क्योंकि बहुत भूखा थे, और मलच ने यवन ने कहा और मुझे आपको देने के लिए कुछ नहीं है ऐसे, तो उन्होंने बोला मेरा धर्म भी नाश हो गया, मेरा पेट भी नहीं भरा। तो ये स्थिति है आधुनिक समाज में, तो ऐसे होता है, तो हम लोगों को इसको प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। आजकल बहुत सारा स्कूल खोल रहे हैं, इस्कॉन में भी बहुत सारे लोग स्कूल खोल रहे हैं, सबको प्रशिक्षण देना चाहते, मास एजुकेशन देना चाहते, तो उससे क्या होगा समाज में उत्पाति हो। यह शास्त्र विधि मुस्तृज वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। तो ऐसे होगा, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि का विधि बिना एकांत की हृदय भक्ति उत्पाद है, उत्पाद होगा समाज में, और कुछ नहीं, ऐसे भक्ति से ऐसे प्रचार से सबको आईएएस ऑफिसर बनाना चाहते हैं, सबको क्या बनाना चाहते हैं, बड़ा डॉक्टर बनाना चाहते हैं, बड़ा ये होना चाहते, तो कौन अन्न कौन उगेगा, है कि नहीं। तो जब प्रभुपाद हैदराबाद गए थे 1976 में, वहाँ पर वो एक प्रेस रिपोर्टर ने उनको प्रभुपाद जी को पूछा, आपका क्या सिद्धांत है, द्वैत या अद्वैत, ऐसे पूछा उन्होंने। वहाँ 3-4 साल से बारिश नहीं हुआ था। प्रभुपाद जी बोले, अरे बाबा खाने के लिए अन्न नहीं है, तुम द्वैत और अद्वैत के बारे में पूछ रहे हो। भगवद गीता प्रैक्टिकल बोलता है, पहले अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, बाद में उसके बारे में चर्चा करेंगे। द्वैत आते पहले अन्न अच्छा है, या दूसरे इसका तद विरुद्ध आप देखेंगे तो भौतिकवादी लोग, जब आप कृष्ण भावनामृत का प्रचार करेंगे, स्वामी जी खाने के लिए कुछ नहीं, आप क्या बोल रहे, भगवद गीता बोलते हैं ऐसे। अरे भगवद गीता वो भी सिखाता है बाबा, सुनो ये अन्नाद भवन्ति भूतानि, इसके लिए तुम गधे की तरफ मेहनत करने की जरूरत नहीं अन्न के लिए। तो दिस इज नॉनसेंस, सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के लिए इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ गधे का कार्य है। उस दिन हम बता रहे थे ना, एक गधा वो क्या करने लगा, वो घास खाते खाते वो अपने जंगल में रहने लगा, एक गधा वो क्या है ऐसे कंपनी में जाके मेहनत करने लगा, ऐसे आशा करते हुए एक दिन वो कंपनी के मालिक का पुत्री के साथ मैं विवाह करूँगा करके। तो उससे हम लोग क्या समझते हैं, क्यों प्रभुपाद बार बार कहते थे गधे बन गए ये लोग करके, क्यों, क्योंकि गधा बुद्धिमान नहीं है वो, कि ये जो घास है कहीं भी उपलब्ध है, आसानी से उपलब्ध है। इसका अर्थ है कि रोटी कपड़ा मकान के लिए हमें इतना संघर्ष करने का जरूरत नहीं है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है सब कुछ। अन्न प्राप्त करने के लिए इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं, अपने नियत कर्म करते रहना चाहिए, बस अन्न प्राप्त हो जाएगा अपने आप। तो प्रभुपाद जी क्या करते थे, वो जंगल में, अफ्रीका के जंगल में कितने सारे बड़े बड़े हाथी हर रोज 200 पाउंड अन्न खाते हैं, उसको कौन सप्लाई कर रहा है, तुम्हारा फैक्ट्री से सप्लाई कर रहा है, तुम्हारा गवर्नमेंट रेशन खोल दिया वहां पर, उसको कौन सप्लाई कर रहे है। और मनुष्य रैस्कल ह्यूमनाइड्स हैव क्रिएटेड फूड प्रॉब्लम, है ना, मनुष्य ये अन्न का समस्या को बनाया है। पशु पक्षी कोई भी चीटे कोई भी पशु समाज में आप देखेंगे तो अन्न के कारण कोई मर नहीं गया, नहीं रहे, कोई मर रहे है क्या, सूखा, वो भी तुम मनुष्य ने किया है उसको सूखापन, पशु ने किया है, ऐसे बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगा के सूखा बन गया, सभी नदियां सूख गए, नदियों में वो सभी फैक्ट्री का ड्रेनेज छोड़ दिया, कितना उत्पाद किया है मनुष्य ने, क्यों सूखा पड़ता है वो भी इस श्लोक में बताया है ना, पर्जन्याद यज्ञ संभव, पर्जन्याद अन्न संभव यज्ञाद भवति पर्जन्य, तो यज्ञ न करने के कारण पर्जन्य नहीं होता है, सूखा पड़ता है। तो कभी कभी ये नास्तिकवादी लोग वो कहते हैं, वी डोंट वांट प्रेइंग हैंड्स वी वांट सर्विंग हैंड्स बोलते हैं, ऐसे वो लोग वो कुछ ऐसे भूखा मरता हुआ व्यक्ति का बच्चे का वो चित्र दिखाते हैं, तुम नास्तिकवाद के कारण इसका उसका स्थिति ऐसे हो गया तुमको, तुम चोर पापी हो उसके कारण ही सब लोग ऐसे हो रहे हैं। तो ये सब समस्या है, मनुष्य को क्यों अन्न का समस्या होना चाहिए, पशु समाज कोई अन्न के कारण नहीं मर रहे, क्योंकि ये लोग चोर और पापी बन गया। तो 34 स्कंद में पृथ्वी क्या कर दिया था, क्योंकि कोई भी यज्ञ नहीं कर रहे थे, सब चोर चोर ही भूते, तो सब चोर बन गए थे, इसके कारण पृथ्वी ने क्या किया, सभी जो चीज़ को अंदर ले लिया। तो जब प्रथु महाराज तो फिर राजा बन गए, तो उन्होंने देखा प्रजा कितना पीड़ित है अन्न न होने के कारण, तो पृथ्वी को वो चुनौती दिया उन्होंने, तो तुरंत ही तो वो नहीं मानी, तो इसको पृथ्वी को मारने के लिए गए वो, एक गाय का रूप धारण किया, फिर भी छोड़े नहीं। तो तब हम लोग देखते हैं कि वो कहते हैं मैं क्या करूँ, कोई भी ये लोग यज्ञ नहीं कर रहे, सभी लोग चोर बन गए, चोरी भूते वो शब्द उपयोग करते हैं वो। इसलिए समस्या अभाव क्या कैसे होता है, ये सब नास्तिकवाद के होता है और यज्ञ न करने से होता है। तो वो समस्या है दुनिया में, इसलिए भक्ति सिद्धांत शास्त्र ठाकुर कहते हैं समस्या क्या है, गॉडलेसनेस, भगवत भावना न होना, कृष्ण भावना न होना, वो असली समस्या है भौतिक जगत में। तो अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य है, मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न शाक फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के उच्चिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त है उन्हें भी शाक का उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। अतएव हमें अंततो गत्वा खेतों का उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाले प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है, और ऐसी वर्षा इंद्र सूर्य चंद्र तथा आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास है, भगवान को यज्ञ के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है। अतः जो इन यज्ञों का संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना होगा, यही प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ और विशेष रूप से इस युग में उद्योग के लिए संस्तुत संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी जब संकीर्तन यज्ञ किए हैदराबाद में, तब क्या हो गया, बारिश हो गया। तो कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम सस्मा सर्वगतम ब्रह्मा नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। एक और चीज पिछले श्लोक में भी, 13वें श्लोक में भी वो बोलते हैं ना, अभाव के कारण क्या है। तो बंगाल में एक बार ऐसे हुआ था, वो युद्ध के समय पर वो कंट्रीव्ड फेमाइन बोलते हैं उसको, फेमाइन मतलब अब अकाल है, अब अकाल ही बोलते सूखापन। तो उसके कारण तो कोई अन्न नहीं था, प्रभुपाद जी बोलते हैं। लेकिन मेरे परिवार में 5 लोग थे, मेरे बच्चे 5 लोग, हम 2 लोग और कुछ सेवक, कुल मिला के 10 लोग थे। तो लेकिन कभी भी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ, हमेशा मैं सबके लिए पूरी तरह से जितना भी ज़रूरत है वो पूरा कर सका, ऐसे बोलते हैं। और कई मेरे भक्तों, कई अन्य भक्तों को भी मैंने पूछा कि हाँ, अलग अलग जगह पर, बहुत ही रिमोट स्थानों पर भी, तो सभी लोगों को, जो भक्त लोगों को पूरी तरह से प्राप्त हुआ अन्न, ऐसे बोलते हैं। तो कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, तो यज्ञ कर्म से होता है। तो जो वर्णाश्रम को पालन करना ही यज्ञ है बस। और कर्म कहाँ से आते हैं, उत्पन्न होते हैं, वेदों में नियमित कर्म के विधान है, ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम। और ये वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। तस्मा सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। तो और भगवान कहते हैं कि तो कर्म ब्रह्म वेदों में दिए गए हैं, तो यहाँ पर वेदों को ब्रह्म शब्द से उपयोग किया गया है। तो वो श्लोक में भी है ना, वेदांत सूत्र के पहले श्लोक था, तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा मतलब अभी वेदों से आप क्या करो, ज्ञान प्राप्त करो, वेदों में क्या है उसके बारे में जिज्ञासा करो। एक अर्थ होता है ब्रह्म का, क्या अर्थ होता है वेद, तो वेद को भी ब्रह्म कहते हैं, शब्द ब्रह्म ऐसे कहा जाता है ना। तो कर्म ब्रह्मोद्भव वेदों में ये सब दिए गए हैं। तो वेद प्रणहितो धर्मो अधर्मस्तद विपर्य, तो वेद ही क्या है उसमें धर्म, धर्म क्या है उसका वर्णन होता है, या कर्म क्या है उसका वर्णन होता है। तो ब्रह्माक्षर वेद कहाँ से आ गए ऐसे वर्णन करते हैं। तो या प्रभुपाद इसके ऊपर पहले वो चर्चा करते हैं, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म क्या होना चाहिए वो क्या वेदों में वर्णित है ना। तो आजकल ये भी प्रोपेगेंडा चल रहा है ना कि वॉट एवर यू डू, डू इट फॉर कृष्णा, डू समथिंग फॉर कृष्णा, डू एवरीथिंग फॉर कृष्णा ऐसे। लेकिन कर्म क्या है वो वेदों में वर्णित है। अपने मन गणित कुछ भी कर्म को हम लोग नहीं बना सकते हैं, वो भगवान को समर्पित नहीं होता, वो यज्ञ नहीं होता। यज्ञ मतलब वो वेदों में वर्णित होना चाहिए। ऐसा भी मैं कुछ भी करूँगा फिर भगवान को, भगवान के लिए उसको समर्पित करूँगा, ऐसा नहीं होता है। डू इट फॉर कृष्णा, सम्मो और अदर डू इट फॉर कृष्णा, तो सम्मो और अदर डू इट फॉर कृष्णा होता नहीं है, वो वेदों में वर्णित होना चाहिए तभी होता है यज्ञ, तभी वो भगवान उससे प्रसन्न होंगे। सम और अदर डू इट फॉर कृष्णा इज डिमोनिक, इट इज। तो ऐसे कर्म, तो प्रभुपाद जी यहां पर इस तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं कि वेद क्या है, दे आर वर्किंग डायरेक्शंस बोलते हैं, कि कर्म को कैसे करना चाहिए उसका मार्गदर्शिका है। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे ना, तो वेद जब भगवान ने यज्ञ दिया उन्होंने सृष्टि के आरंभ में, उसके साथ वो यज्ञ कहाँ पर दिया उन्होंने, वो वेदों में दिया। तो वेद क्या है, हमारे जीवन के मार्गदर्शिका है, ऐसे वेदों का परिभाषा दे रहे, शास्त्रों का परिभाषा दे रहे। तो वेद हमारे जीवन के मार्गदर्शिका है, तो उसके अनुसार ही हमें करना चाहिए, नहीं तो हमारा जीवन विफल हो जाएगा, सफल नहीं होगा, है कि नहीं। हम लोग प्रगति नहीं करेंगे उसके अनुसार नहीं करेंगे तो, और जस्ट डू इट करेंगे, सम और अदर डू इट। और उसके बाद में कहते हैं ब्रह्माक्षर वेद कहाँ से आ गए, अक्षर ब्रह्माक्षर समुद्भवम, ये ब्रह्म जो है वेद जो है अक्षर समुद्भवम, तो परब्रह्म से निकले वो। यहाँ पर बृहदारण्यक उपनिषद से वो ले कर रहे, अस्य महतो भूतस्य निश्वासितम् एतद् यदृग्वेदो यजुर्वेद सामवेद तर्वंगी रसः। तो ये भगवान ने क्या किया है कि उन्होंने क्या किया, उनका श्वास है ये, जब उन्होंने श्वास छोड़ा सभी वेद प्रकट हो गए। हम लोग जब श्वास छोड़ते हैं तो सब गंदा वास आ जाता है ना, बहुत महान है ना भगवान, जब वो श्वास चढ़ते थे वेद, वेद मंत्र निकलते हैं उनके श्वासों से, कितना महान है कि नहीं। तो ऐसे कैसे हो सकता है, वेद मंत्र को बोला जाता है, शब्द ध्वनि को मुंह से हम लोग निकलते हैं, श्वास से कैसे ऐसे वेद मंत्र निकले, कि उनका सभी इंद्रियां परिपूर्ण है, अंगाणी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। हर एक इंद्रिया क्या है, वो अन्य इंद्रियों का कारण कार्य करने में वो संपन्न है, तो उससे क्या हो जाता है, उनके इंद्रिया परिपूर्ण होते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, वो दृष्टिपात करके ही प्रकृति को गर्भित करते हैं। इससे ऐसे जीवों को प्रकृति में डाल के जीव का सृष्टि होता है। वो सिर्फ दृष्टिपात करके वो खा सकते हैं भगवान। हम लोग भोग अर्पण करते हैं, नास्तिक लोग कहते हैं कि आप लोग ये भोग अर्पण करते हो भगवान को, वो भगवान तो खाते नहीं, ऐसे ही रहता है, सब लोग तुम्हारे जैसे ही खाना चाहिए क्या? भगवान भी तुम्हारे जैसे ही खाना चाहिए, क्यों भगवान तुम्हारे जैसे मानते हो? है ना, सामान्य, ये सामान्य प्रवृत्ति होता है। भगवान जब बोलते हैं, हम लोग भगवान के बारे में लोग सोचते हैं वो भी एक हमारे जैसे व्यक्ति है, जैसे वो हमारे जैसे ही क्यों करना चाहिए? वो कैसे भगवान बनते हैं जो सिर्फ हमारे में से एक होते हैं वैसे लोग, या हमारे जैसे कार्य करते हैं, खाते हैं, सोते हैं? उनमें कुछ विशेषता होना चाहिए ना, है कि नहीं? इसलिए वो भगवान है। सभी जीवों से कुछ तो विशेषता और श्रेष्ठता होना चाहिए कि नहीं? वो जरूरी है क्या हम जैसे ही खाना चाहिए और खाने के बाद सब कुछ खत्म होना चाहिए? वो खा सकते हैं और खा के यथारूप उसको रख भी सकते हैं, वो भगवान है। तुम भगवान को अपने स्तर पर क्यों लेकर आते हो? क्यों ये सोचते हो कि तुम भगवान भी एक मनुष्य जैसे ही होंगे? तो वो ही उनका सीमित बुद्धि है, उसको कूपमंडूक न्याय कहते हैं। तो ये कूपमंडूक न्याय है ना, है कि नहीं? भगवान भी ये हमारे जैसे ही होना चाहिए करके, हमारे जैसे ही खाना चाहिए, हमारे जैसे ही सोना चाहिए, क्यों? जरूरी नहीं। तो ये सब नास्तिकवाद क्या है, कुछ बुद्धिवान नहीं है। तो भगवान वो सिर्फ देखने से खा सकते हैं और सिर्फ वो अपने दृष्टिपात से सभी जीवों को जन्म दे सकते हैं। तो बोलते हैं यहाँ पर प्रभुपाद, ब्रह्म संहिता में प्रमाणिक होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं, अपने प्रत्येक इंद्रिय द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्द में भगवान अपने निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और वे अपने नेत्रों से गर्भदान कर सकते हैं। वस्तुतः यह कहा गया है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। इस तरह प्रकृति के गर्भ में बद्ध जीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया जिससे वे भगवत धाम वापिस जा सके। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस तरह बनाए गए हैं कि मनुष्य अपने विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग पूरा हो करके भगवान के पास लौट सकता है। तो आप देखिए, वर्णाश्रम या समाज को या ऐसे वैदिक सभ्यता कैसे बना था, उसको व्यवस्था की गई थी धर्म अर्थ काम और मोक्ष। सभी लोग अपना धर्म को पालन करेंगे, कर्म को पालन करेंगे जो वेदों में दिया गया है, उससे उनको काम पूर्ति हो जाएगा, अर्थ प्राप्त होगा, जरूरतें प्राप्त हो जाएंगे और उससे क्या हो जाएगा, फिर अपनी उनकी इच्छाओं को पूर्ति कर सकते हैं, अंत में भगवान के पास वापस, ऐसे व्यवस्था की गई। तो आजकल किसी को ये सब व्यवस्था के बारे में कोई ज्ञान नहीं। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति के सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपने विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर होता है, अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते वे भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों का कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। ठीक है,
एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति अगायो इंद्रिया रामो मोगं पार्थ सजीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चित ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रिय की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवन रहता है। तो हम चर्चा कर रहे थे ना, 12वें श्लोक में यज्ञ जो नहीं करते हैं वो चोर है, 13वें श्लोक में पापी है, 14वें श्लोक में वो लोग क्या है, उनको अन्न भी नहीं मिलेगा खाने के लिए 14वें या 15वें श्लोक में। और यहाँ पर ये बताया गया है निष्कर्ष, ये इस विभाग का अंतिम श्लोक है। इस यज्ञ का जो चक्र को, ये चक्र है ये, तो आप 10वें श्लोक से लेकर 16वें श्लोक तक एक चक्र बनाना चाहिए। 11वें श्लोक में एक छोटा सा चक्र बनाया है ना, तो इसको भी एक चक्र बनाना चाहिए। तो एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्ती यति यह अगायुर इंद्रिय राम। तो ये निष्कर्ष दे रहे, नहीं करता है निश्चित ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्र की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवन रहता है। तो आप कल्पना कीजिए अभी का समाज का स्थिति कैसे हुए, क्योंकि कोई भी यज्ञ का जो जो ये जो चक्र है वो कोई पालन नहीं करते हैं, है ना, कोई वेदों को पालन नहीं करते हैं। तो आजकल कुछ लोग ऐसा भी प्रोपेगेंडा करते हैं, नास्तिकवाद, कृष्ण भावनामृत के नाम पर। प्रभुपाद जी ने क्या किया, ये सब यू नो भारतीय सभ्यता को प्रचार करने के लिए नहीं आए, वो कृष्ण भावनामृत को प्रचार करने के लिए आए। तो भारतीय सभ्यता ये वैदिक सभ्यता के आधार वेदों के ऊपर आधारित है, वेद भारत में है, है ना, तो वेद कहाँ से आ गए, वो वैकुंठ से सीधा अमेरिका लैंड हो गए क्या? तो इसलिए जो ये वेदों को जो पालन नहीं करते हैं वो लोग क्या है, सब पापी हैं। उसके कारण उनका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अगायुर इंद्रिय रामो मोगं पार्थ सजीवति, इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद इसको खंडन कर रहे हैं, जो इंद्रिय रामो, अघायुर इंद्रिय रामो, इंद्रिय आराम इंद्रिय राम ये शब्द है ना, तो सिर्फ इंद्रियों को संतुष्ट करना, इंद्रियों को पापमय जीवन बिताना और इंद्रियों को संतुष्ट करना, कठोर परिश्रम करो और इंद्र तृप्ति का आनंद लो, इस संसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया गया है इस श्लोक में। अतः जो लोग इस संसार में भोग करने चाहते हैं उन्हें उपर्युक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परमावश्यक है। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, सुप्रीम नेसेसिटी, अंग्रेजी में क्या शब्द किया है उसको, एब्सोल्यूट नेसेसिटी है कि नहीं। इसका अर्थ है जो भी गृहस्थ बनना चाहते हैं इसको पालन करना ही पड़ेगा। सिर्फ हम लोग देवी देवताओं को नहीं करेंगे लेकिन भगवान को उसको अर्पित करेंगे, इसका अर्थ दूसरे शब्दों में वर्णाश्रम धर्म को पालन करना ही पड़ेगा, है ना, एब्सोल्यूट नेसेसिटी। तो जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि के विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि वे पाप पुण्य से परे होते हैं, किंतु जो लोग इंद्र तृप्ति में जुटे हुए हैं
उन्हें पूर्व पूर्वोक्त यज्ञ चक्र की द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता ही विषय परायण होते हैं, आवश्यकता रहती है। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावनामृत भावना भावित नहीं है वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं, अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषयोन्मुख लोगों विषयों के फल से फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है। जो लोग ऐसे सोचते हैं हमारे प्रयास में ही क्या है तो संसार की क्या है संपन्नता आधारित है। आधुनिक समाज इसके आधार पर बनाए गए हैं। हमारे प्रयास से क्या होता है संपन्नता होगा। ये तकनीकी का विज्ञान ना आर्थिक विकास ये किसके आधार पर हम लोग प्रयास करके हम लोग संपन्नता प्राप्त करेंगे प्रोस्पेरिटी निर्भर है जिसे देवता संपादित करते हैं। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में यह कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता तो इस कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वे आचार संहिता तक अपने प्रगति को सीमित न करे अपितु उस पर उसे पार करके कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करें। लेकिन वहाँ पर ही हम लोग यज्ञ में फंस गए देवी देवताओं को प्रसन्न करने और हमारे इच्छाओं को पूर्ति करने में कृष्ण भावना भावित नहीं तो वो भी व्यर्थ है। तो अगला श्लोक यस्मात्वरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने ही में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं है होते। तो अभी आगे का विभाग जो दिव्य चेतना में रहते हैं या आत्मा में ही आत्म साक्षात्कार कल व्हाट यू हैड रिटन आत्म साक्षात्कार यू हैड रिटन वो भी है यार इस तात्पर्य में ही स्वरूप सिद्ध शब्द आता है ना। तो यस्यात्मरतिरेव स्यात् आत्मा में ही आनंद लेता है आत्मतृप्तश्च मानवः और आत्मा में ही संतुष्ट है स्वयं प्रकाशित तृप्त आत्मन्येव च संतुष्टस् आत्म साक्षात्कार युक्त है आनंद लेता है जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार जिसने दूसरा यहाँ पर रूपा जी क्या बोल रहे हैं तो आत्म यस्यात्म रति रेव स्याद आत्मा में रति मतलब आनंद लेते हैं आत्मतृप्तश्च मानवः सो उनका जीवन क्या है वो आत्म साक्षात्कार में युक्त है तो और आत्मा में संतुष्ट है तस्य कार्यम न विद्यते उसके लिए कोई कार्य नहीं है कर्तव्य नहीं नियत कर्म नहीं है उसके। जो हमेशा ब्रह्मचारी आश्रम में संतुष्ट है सेवा करके संतुष्ट है उसको ऐसे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके अपने धर्म को पालन करना वगैरह अलग अलग अपने गुणों के कारण जरूरत नहीं है। तो वो ऐसे ही जीवन क्या है आत्म साक्षात्कार के लिए समर्पित करके आगे बढ़ सकते हैं। जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है जो व्यक्ति कृष्ण पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्य में पूर्णतया संतुष्ट रहता है उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होगा होता। कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों हजारों यज्ञों को संपन्न करने का पर ही संभव हो पाता। तो एक इनडायरेक्ट प्रोसेस है, यज्ञ करते करते हजारों हजारों सालों तक। कोई कोई वैष्णव संप्रदाय में वो लोग ऐसे वर्णाश्रम को पालन करके ऊंचे ऊंचे लोकों में जाएंगे, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, भगवान के नाम प्रवेश करेंगे, ऐसे बोलते हजारों हजार ऐसे यज्ञ करते रहेंगे। तो उनका शुद्धिकरण धीरे 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 होता रहता है, लेकिन कृष्ण भावना व्रत क्या है, बहुत ही शीघ्र से हमारा शुद्धिकरण होता है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने में मनुष्य परमेश्वर के साथ अपना संबंध की पूर्ति पूर्णतया आश्वस्त हो जाता है, भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है। अतः वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है। ऐसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता और न ही उसे सुरा सुंदरी तथा अन्य प्रलोभन में कोई आनंद मिलता है। तो वो आत्मा में ही संतुष्टि है, आत्मा में ही आनंद लेता है। भौतिक जगत में भौतिक आनंद तृप्ति क्या है, सुरा सुंदरी तथा अन्य प्रलोभन, यही भौतिक जीवन है या भौतिक आनंद है। तो अगला श्लोक लेंगे, नैवस्तस्य कृते नार्थो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्तव्यपाशयः। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करना की आवश्यकता है रहती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती है। तो उसका अर्थ है भगवान, हालांकि उसको जरूरत नहीं है लेकिन वो फिर भी त्यागता नहीं, उसको वो कर भी सकता है कि नहीं, ऐसे यू नो। तो जैसे भक्ति विनोद ठाकुर है, वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है ना, तो उनको जरूरत नहीं है कुछ ऐसे करने के लिए, वो हरि नाम जप करके वो ऐसे ही रह सकते जैसे बाबा जी लोग रहा करते थे गौ किशोरदास बाबा, फिर भी उन्होंने किया क्योंकि दूसरों को एक उदाहरण साबित करने के लिए कि कैसे उस स्थिति में रहकर भी हम लोग भक्ति कर सकते हैं ऐसे। लेकिन सबको नहीं होगा। वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता, किंतु यह कृष्ण भावनामृत निष्क्रियता भी नहीं है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति किसी के शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वो मनुष्य या देवता। इसके विशेष करके यहाँ पर वो किसी अन्य जीव के ऊपर निर्भर नहीं रहना नहीं रहता, मतलब इसका है देवी देवताओं के ऊपर वो निर्भर नहीं रहता, लेकिन जो लोग हैं वो अन्य लोग हैं वो निर्भर रहते हैं। कृष्ण भावनामृत में वो जो भी करता है वो उसकी कर्तव्य संपन्न संपादन के लिए पर्याप्त है। सो टेक्स्ट 19, तस्मादसक्त सततम् कार्यकर्मा समाचरः असक्तो आचरम कर्मा परमापोति पुरुषः। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहने चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो पिछले अध्याय में भी इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, ऐसे अनासक्त इच्छित कर्म नहीं करना चाहिए, डिजायर्ड एक्टिविटीज नहीं करना चाहिए, कर्म से फल आसक्त होकर कर्म नहीं करना चाहिए। तो ऐसे निरंतर हम लोगों को कर्तव्य समझकर ये मेरे लिए धर्म है करके करते रहना चाहिए, तो तब वो परम आपनोति पुरुष परम ब्रह्म की प्राप्ति होता है। तो परम आपनोति पुरुषः परब्रह्म की प्राप्त करता है। तो ये अलग अलग होता है, योगी उनके लिए, ज्ञानियों के लिए परब्रह्म क्या है, निराकार ब्रह्म, और योगियों के लिए वो परमात्मा, और भक्तों के लिए भगवान है। तो सभी लोग अलग अलग उनके गंतव्य को प्राप्त करते हैं। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा से ही इच्छा है कि वह ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति होने के अहिंसक या होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है, यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है, जिसके संस्तुति भगवान कृष्ण ने की है। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए है जाते हैं जो इंद्र तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हो, किंतु कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किए जाता है वह अच्छे या बुरे कर्म के फलों से परे है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल की प्रति लेश मात्र आसक्ति नहीं रहती, वहाँ तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतया अनासक्त रहता है। तो हमें फल से आसक्त नहीं रहना चाहिए। हम लोग भक्ति में फल की इच्छा तो करते हैं, लेकिन यह एक हद तक हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है। हम लोग बहुत प्रचार करेंगे लेकिन ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हुआ, फिर भी ठीक है ना, हमारा सेवा हो गया, हमारा प्रचार हो गया, वो समझ लेना चाहिए। कर्म नैव हि संसिद्धि आस्थिता जनकादय लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों के शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो भगवान बोल रहे ठीक है आपको जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए आपको करना पड़ेगा, ऐसे कहते हैं। दूसरों को विधा उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए नहीं? है ना, विशेष करके जब हमारे साथ नवसकी भक्त या इर्द गिर्द रहते हैं, वो लोग क्या करते रहते हैं, दूसरों को देखकर उनका अनुकरण करते रहते हैं, तो इसलिए उनको थोड़ा प्रेरणा देने के लिए तो बहुत सारा चीज करना पड़ता है ना। हाँ देखिए, यहाँ पर एक उदाहरण आ गया है ना। दूसरों के लिए तो उदाहरण साबित करने के लिए हम लोगों को करना चाहिए। ओके सो रीड।
जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध देखने में, अतः वे विधान
कौन जनक महाराज पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे जनक क्या है, बहुत सारे जनक महाराज हुए मिथिला में, ये नेपाल से है देखिए।
जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, अतः वे विधान कर्म करने के लिए बाध्य न थे, तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते हैं। जनक सीता जी के पिता तथा श्री राम तथा भगवान श्री राम के
प्रभुपाद जी ने बताया ठीक है,
भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति
भी, वो भी एक महाजन है ना, 12 महाजनों में एक महाजन है,
किंतु चूंकि वे मिथिला जो भारत के बिहार प्रांत में एक परगना है के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य बालक किस प्रकार किया जाता है। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को ये सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत्य परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था। अतः ऐसे धर्म करने के लिए युद्ध करना आवश्यक था। यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, तो भी वे जनता को सिखाने के लिए कि किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए कर्म करता रहता है। कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उसका अनुसरण कर सकते हैं। और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की।
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तद्तदेवेतरो जनः स प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। जो श्रेष्ठ लोग हैं समाज में, या विशेष करके जो राजा होते हैं, या शिक्षक होते हैं, माता पिता होते हैं, वो सब लोग अपने ऊपर जो निर्भरित है उनके लिए वो श्रेष्ठ लोग हैं। तो वो जो आचरण करते हैं सभी लोग उसका अनुगमन करते हैं। और विशेष करके गुरु, यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं गुरु शिक्षक के बारे में वर्णन करते हैं कि वो कैसे उनका आचरण ठीक होना चाहिए, इसलिए उनको आचार्य भी कहते हैं। आचार्य, आचार्य मतलब उसका भी वायु पुराण में वर्णन आता है, आचिनोति यह शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्माद् आचार्यस्तेन कीर्तितः। तो आचार्य कौन है? जो जो शास्त्र के अर्थ को समझते हैं और उसको स्थापित करते हैं और उसको स्वयं आचरण करके प्रचार करते हैं, उनको आचार्य कहते हैं। तो ये आचार्य शब्द का अर्थ है। तो वो लोग चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद जी यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं, पहले आचार्य क्या है, वो आचरण करके दूसरों को सिखाना चाहिए। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं ना, वही बीड़ी फूंकता है तो दूसरों को क्या सिखाएगा, बीड़ी फूंकना नहीं चाहिए। एक बार एक स्त्री एक साधु के पास आई और उसको अपने पुत्र को लेकर आए थे। उनको बताया, स्वामी जी क्या कीजिए, ये बहुत स्वीट खाता है, इसको थोड़ा बोले कि आपका बात मानता है, ये बोले कि मत खाओ करके। उन्होंने बताया अगले हफ्ते आ जाओ। तो अगले हफ्ते वे वापस आ गए, फिर तब उन्होंने बताया ये बेटा स्वीट मत खाओ ज़्यादा ऐसे। तो इन्होंने पूछा उस स्त्री ने कि आप पहले ही क्यों ऐसे नहीं बताया, इतना ही बताना है तो क्यों एक और बार आपको आपने बुलाया, क्योंकि वो बोल रहे थे मैं भी स्वीट खा रहा था, कैसे मैं उनको बता रहा हूँ। एक जोक ऐसे। तो ऐसे जब तक हम लोग आचरण नहीं करते दूसरों को हम लोग सिखा नहीं सकते। और विशेष करके जो मनुष्य के लिए जो आचरण चीज है वो मनुष्य संहिता में वर्णन किया गया। ऐसे प्रभुपाद, कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनुष्य संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ है, अतः नेता व का उपदेश ऐसे आदर्श ग्रंथों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने अपने उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों को पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पदचिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति करने का यही साधन है। कौन सा श्लोक श्रीमद् भागवत में? वो श्लोक महाभारत से, लेकिन महाजन भागवत में वर्णन किए गए है ना। चाहे राजा हो या राज्य के प्रशासन अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता का स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सब का अपना आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है।
अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। जो पिता, शिक्षक, प्रशासनाधिकारी, राज्य के प्रशासन, राजा, पिता या शिक्षक, ये तीनों विशेष करके क्या होना चाहिए, सभी उनको धर्मशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। तो भगवद्गीता का कम से कम भगवद्गीता का ज्ञान होना चाहिए, पिता होने के लिए भगवद्गीता का ज्ञान होना चाहिए, ये अर्थ होता है। समझ में आने के लिए भगवद्गीता का ज्ञान होना चाहिए कम से कम। तो नहीं तो कुत्ते बिल्ले भी पिता बन रहे हैं, उसमें क्या अंतर है ना? व्हाट इज द डिफरेंस? कुछ अंतर होना चाहिए ना। ठीक है, हम लोग यहीं पर रुकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। कुछ प्रश्न, टीका, टिप्पणी?
उदाहरण के लिए आप दोपहर में ज़्यादा सोते हैं, मत सोइए, लेकिन मान लीजिए कि वो अपने आप ही ज़्यादा सोते हैं, तो जो अनिश भक्त है उसे तो ऐसा नहीं सुनत कह रहे वो तो ज़्यादा सो रहे हैं, हमें तो वो क्यों बोल रहे हैं, मतलब हमें अपनी तरफ से तो प्रयास करना चाहिए कि अगर वो नहीं भी ऐसा कर पा रहे तो मैं तो ट्राई करूँगा उनसे, नहीं तो हमारी प्रगति तो रुक जाएगी उनको देख देख के। सही ऐसा कि कई ऐसे भक्त बोलते हैं इसीलिए वो तो सो जाते हैं, मुझे क्यों बोल रहे हैं।
कभी कभी अलग अलग भक्तों का जरूरतें अलग होते हैं ना, लेकिन तो वो देखना पड़ेगा। और सामान्य शिक्षा दिया गया है 6 घंटा सोना चाहिए करके, है ना, इतना काफ़ी नहीं है, कभी कभी ज़्यादा हो सकता है, कुछ वक्तों को ज़्यादा लग सकता है 7 घंटा। कभी भी हमें नेगेटिव इंस्पिरेशन नहीं लेना चाहिए। तो नेगेटिव इंस्पिरेशन मतलब क्या है, वो सिंसियर नहीं है, गंभीर नहीं है, है ना, वो कर रहा है मैं भी करो करके वो नरक में जाएगा, तुम भी नरक में जाओगे। वो दैट इज नियोफाइट मेंटल, दैट इज नॉट गुड, है कि नहीं? हम इसलिए आपको 3 बजे उठने के लिए नहीं बोलते क्योंकि हम ही नहीं उठते हैं। तो क्या बोलेंगे, यू नो, बिकॉज ऑफ आई स्पीक सो मच आई गेट माउथ अल्सर्स एंड ऑल, यू नो, एंड बॉडी हीट, सो आई टेक सफिशिएंट रेस्ट इन द नाइट, नहीं तो होल डे आई कैन नॉट डू माय सर्विस राइट। और कुछ? कल 6:30 घंटा हुआ, कल 6:30 घंटा, 6:30। स्वरूप सिद्ध मतलब भगवान कृष्ण के ही भक्त, अन्य कोई नहीं है। स्वरूप, वास्तविक स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य, वास्तविक स्वरूप क्या है? जीव का स्वरूप भगवान के नित्यदास है ना, ठीक है, तो वही स्वरूप सिद्ध होते हैं। या नोबडी कैन बिकम अ स्वरूप सिद्ध डिवोटी,
ठीक है। जो भी नियत कर्म कर रहा है उसका जो भी फल आ रहा है उसको भगवान को देख ही ले रहे हैं।
ऐसे ही हुआ करता था, ऐसे ही हुआ करता था पहले जमाने में। तो वो लोग खेत से जो भी आता था उसको भगवान को अर्पण करते थे, ऐसा कुछ त्यौहार मनाते थे, फेस्टिवल मनाते थे, सब हुआ करते थे, बहुत सारे नियम हुआ करते थे, होता नेचुरल सिस्टम था, अभी किसी को पता नहीं है।
कपड़े जो भी यूज कर रहे हैं वो भी
भगवान अर्पण कर सकते हैं, मेडिसिन भी अर्पण कर सकते हैं, लेकिन खड़ुआ मेडिसिन भगवान को अर्पण नहीं, जो चवन प्राश वगैरह होते हैं उसको अर्पण कर सकते हैं, ठीक है, खड़ुआ नहीं अर्पण कर सकते।
हम लोग मार्केट में जाते हैं ना, कोई व्यक्ति सेवा करना चाहता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा भी सेवा कर रहे ले रहे हैं, तो उधर जो मांस काट रहे हैं वो लोग के पास नहीं जा रहे थे, वो नाराज है, बहुत लोग धानी भी होता है उसका, वो उपवास कर रहा है तो उसका सेवा लेना उचित है कि नहीं, हम लोग भगवान की सेवा यूज कर सकते हैं?
नहीं, क्योंकि उनको समझाना चाहिए, उनको प्रचार करना चाहिए, ये मत करो करके, बाद में सेवा ले सकते, ठीक है, क्योंकि उसका हम लोगों को उसका कर्म लेना पड़ता है ना, है ना?
किसी बालक है उसका भूल कैसे पहचानेंगे, किस उम्र में डिसाइड होता है, क्या क्या उसमें बात है?
भगवद्गीता में ये तीन गुणों का वर्णन है, उसको अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए और उसके आधार पर, और विस्तार में चाहिए तो भागवत में भी वर्णन है गुणों के बारे में 11वें स्कंध में, तो उसके आधार पर हम लोग समझ सकते हैं, है ना, लक्षण दिखाई देंगे ना, तो ये सब ज्ञान होना चाहिए, इसलिए शिक्षक को ये सब ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। कुछ भक्त लोग बहुत सारा ऐसा धर्म शास्त्र वगैरह पढ़ना चाहते हैं ये सब समझने के लिए, लेकिन मेरे अनुसार भगवद्गीता और भागवत पढ़ लिया तो काफ़ी है, उसको समझ लिया तो बहुत है, इसमें बहुत काफ़ी है। वो है लेकिन एक्स्ट्रा चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी है, और तात्पर्य में भी बहुत सारा ऐसे कोर्स आते हैं संहिता से, है ना,
बारिश से अनाज आता है, कई जैसे अमेरिका में प्रभात बोले कि वहाँ तो इतना भी होता है कि वो समुद्र में फैलते हैं, और कनाडा में इतना मिल,
वो मैंने बताया ना
कैसे
आर्टिफिशियल, वो अभी भी अभाव नहीं है, उसको कृत्रिम रूप से वो लोग मार्केट प्राइस हाई रखने के लिए, तो उसको एक वो एक अगर वो सूक्ष्म चीज समझना है कि वैसे अन हो सकते हैं, लेकिन उसमें उसका जो लाभ होना चाहिए उसको कहाँ के वो नहीं होगा, बहुत सारा प्रोडक्शन बना सकते हो, है ना, लेकिन उसका जो जरूरी है आजकल का, जैसे हमने बता रहा था जो अन्न धान्य वगैरह है वो वास्तविक धान्य नहीं है, जो दूध वगैरह है वो वास्तविक दूध नहीं है, ऐसे एक सफ़ेद चीज़ दे रहा है, ऐसे कुछ धान्य दे रहा है, ठीक है, वास्तविक चीज़ चाहिए तो हमें ये सब करना पड़ेगा, तुम ऐसे ही कुछ करके डगलोगे डगलोगा चाहते डक सकते डकल सकते,
मतलब वो धान्य खाने से सत्व शुद्धि नहीं होगी,
जो फल मिलना चाहिए वो होगा नहीं, आपको शरीर में अन्न खाके क्या करना चाहिए, शरीर में शक्ति मिलना चाहिए, आनंद होना चाहिए, भूख मिटना चाहिए, और खाते हो इतना खाने के बाद भी भूख भी नहीं मिलता, कुछ आनंद नहीं होता है, सिर्फ पेट भर मोटा होता है, है कि नहीं, और कुछ
और एक कर्म होते हैं, इतने से एक ही होती है, यज्ञ करना और
या जब कर्म को वेदों के डायरेक्शन के अनुसार करते हैं वही यज्ञ होता है। और विशेष प्रकार के अनुष्ठान भी बताए गए हैं, लेकिन वह कभी सामान्य उसका विशेष अर्थ होता है यज्ञ का, कभी उसका सामान्य अर्थ भी होता है। अभी जब कर्म को हम लोग यज्ञ बोलते हैं वो सामान्य अर्थ है, विशेष करके कुछ अनुष्ठान भी दिए गए वो भी यज्ञ कहते हैं, है ना। देवी देवताओं को अलग अलग यज्ञ करना हो गया। ठीक है, और कुछ? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण।